Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries you may have on business, economic and stock market matters. But please remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331-7117 and 2371-7106. I'm Gaurav Dhawanlal with my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra ke saath hum hazir hain. Aaj shanivar hai aur har ek shanivar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe karyakram mein shamil karenge. Sawal poochne ke liye aap hame in numbers par phone kar sakte hain 2331-4444 और 2371-7117 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन श्रोताओं याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी नमस्कार, धन्यवाद.
और आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल.
थैंक यू अम्बरीश एंड शिशिर, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम.
थैंक यू.
A quick look at the headlines, listeners. Budget session of Parliament to begin on 28th of this month. After 2 weeks of gains, benchmark domestic equity indices plunge around 2.5% this week. And global crude oil prices log weekly gains amid supply concerns.
Sansad ka budget satra 28 January se shuru hoga. दो सप्ताह की बढ़त के बाद घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक इस सप्ताह लगभग 2.5% गिरे और आपूर्ति को लेकर जारी चिंता के बीच तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 5 दिन से चली आ रही गिरावट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी इस सप्ताह भी नीचे आकर बंद हुआ. सप्ताह के दौरान ऑटो, मेटल और तेल और गैस के शेयरों में मुनाफा वसूली दिखाई दी, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग में दोबारा तेजी की उम्मीद के बीच उनके चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखी गई. अमरीका वेनेजुएला में टकराव, रूसी तेल के आयात को लेकर जारी चिंता, रेयर अर्थ के निर्यात पर चीन के प्रतिबंध और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से लगातार निकासी जैसी घटनाओं से बाजार में निराशा दिखाई दी. 30 अंकों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2186 अंक यानी 2.5% से अधिक की गिरावट के साथ 83,576 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 645 अंक यानी 2.45% की गिरावट के साथ 25,683 अंकों पर आ गया. मुंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी मंदी का माहौल दिखाई दिया. सप्ताह के दौरान मिड कैप सूचकांक लगभग 2.6% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 3.9% की गिरावट दर्ज की गई.
Listeners, before we dive further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now we are ready to welcome our first caller from Shimla. The cold climes of Shimla. Rakesh, स्वागत है, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
जी सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार।
नमस्कार जी।
जी मुझे ये जानना था, जैसे मेरे पास 2-3 लाख रुपए, मैं बोर्डिंग में रहूँ या कहाँ रहूँ, और सबसे पहली बार मैं पहली बार इससे जुड़ रहा हूँ, तो मुझे इसकी ट्रेनिंग कैसे मिल सकती, क्योंकि मैं पहली बार मार्केट मात्रा से जुड़ रहा हूँ।
जी जी सवाल पूछिए।
जी तो मेरा सवाल ये है कि मुझे इसमें किस तरह से जो है जो निवेश करना चाहिए और किस तरह से पैसा लगाना चाहिए, ये जानना चाहता हूँ।
इनके सवाल को अगर मैं सही सही समझूं, कि इन्होंने कहा कि मेरे पास 2-3 लाख रुपए हैं और वो कहाँ पे लगाना चाहिए। देखिए इस समय में जो शेयर बाजार की स्थिति है वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो बेहतर ये होगा कि आप अभी शेयरों में सीधे निवेश करने से बचें। आप अगर आप SIP शुरू कर सके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड के होते हैं, और उसमें आपके पास कई तरह के विकल्प होते हैं, चाहे आप इक्विटी में जाएं, चाहे आप डेट में जाएं, हाइब्रिड में जाएं, और ज्यादा जानकारी के लिए कल अगर आप रविवार को ट्यून इन करेंगे तो म्यूचुअल फंड पे हमारा खास कार्यक्रम होता है, तो वहां पर विशेषज्ञ आपकी और मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है, आप डाकघरों की जो योजनाएं हैं जहां पर ब्याज की दरें बैंकों के मुकाबले कहीं बेहतर है और वहां पर सुरक्षा भी ज्यादा है, तो आप उसमें कर सकते हैं। चूंकि आप पहली बार बाजार में आना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप शेयरों में सीधे सीधे निवेश करने से बचें।
और यहां पर हम श्रोताओं को रुपए का हाल भी बता दें, विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 90.16 रुपए दर्ज की गई। अमरीकी टैरिफ को लेकर जारी बातचीत में अनिश्चितता और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच निवेशक सतर्क दिखाई दिए। और अगली खबर बजट से जुड़ी हुई, बजट पूर्व बैठकों के क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजधानी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहा है।
From Mumbai, our next caller, Murtaza. Thank you for waiting, Murtaza. Swagat hai. Please ask your question.
हाँ नमस्ते मैडम।
नमस्ते, बोलिए जी, सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये कि सोना और चांदी का
आप एक बारी रिपीट करेंगे मुर्तजा, आवाज थोड़ी ऊपर नीचे जा रही थी, एक बारी फिर से पूछ लीजिए।
मेरा सवाल है कि सोना और चांदी के बारे में।
राइट
मुर्तजा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय में कि सोने और चांदी की स्थिति क्या रहेगी। खासतौर पे 2025 की बात करें तो सोने में लगभग 60-70% के बीच में मुनाफा हुआ है, चांदी में 100% से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा उसमें मुनाफा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सभी की नजर सोने और चांदी पर है। ध्यान रखिएगा कि जब तक दुनिया में किसी भी तरीके की अनिश्चितता बनेगी, सोने और चांदी आसमान छूने लगेंगे। और अभी के समय में हमने देखा है कि जिस तरीके से एक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद फिर से सोने और चांदी में जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। तो आप अगर सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो कृपया करके आप बिस्किट लीजिएगा, या फिर आप ETF में जो है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसमें लगा सकते हैं। गहने में आप निवेश नहीं करते हैं, बल्कि गहने की खरीदारी आप अपनी भावनाओं के लिए, आप अपने इमोशंस के लिए करते हैं।
और दिल्ली से हमारे श्रोता अमित लाइन पे हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
हाँ नमस्कार सर, मैं अमित झा बात कर रहा हूँ सर, न्यू दिल्ली से।
जी
सिन्हा सर, मेरा 2 प्रश्न है सर, एक तो बजट से संबंधित है और एक US से संबंधित है। तो जो US अभी कुछ दिनों बाद से आ रही है सर कि 500% टैरिफ लगा सकता है यूरोप रूसिया से इम्पोर्ट करने वाले, ऑयल इम्पोर्ट करने वाले कंट्री के लिए, क्या किस हद तक ये बात सही है सर? और दूसरी चीज सर कि जो उसके फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रहेंगे? दूसरा ये कि बजट में इस बार आपके हिसाब से किन सेक्टर पे ज्यादा फोकस करने की संभावना है सर? ज्यादा मतलब बजट में एलोकेशन किन सेक्टर को बढ़िया दी जाएगी? धन्यवाद सर।
देखिए पहला जो प्रश्न है, जो 500% जो टैरिफ की बात है, ये एक विधेयक वहां पर, एक वहां के सीनेटर है जिन्होंने प्रपोज किया है, और ये कहा जा रहा है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या की जो सहमति है अभी उस पर चर्चा होनी है सदन में, और उसके बाद जो है वो कब कानून बनता है ये अभी देखना है। तो अभी वो एक प्रस्ताव के तौर पर है, एक विधेयक के तौर पर है। जाहिर सी बात है कि अगर 500% सीमा शुल्क लगाने की बात की जाती है तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही ये बुरी खबर होगी, क्योंकि हम पहले ही 50% की वजह से प्रभावित हुए। कई क्षेत्र हैं हमारे, चाहे वो कपड़े की बात करें या फिर हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, तो उसका असर तो भारत पर पड़ेगा और साथ ही साथ दुनिया के कई और देशों पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि वो एक प्रस्ताव है, उस पर कोई अंतिम फैसला जो है वो नहीं लिया है, और फैसला क्या होगा उस पर अभी अनुमान लगाना उचित नहीं है। एक और बात पे आप ध्यान रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं कि अगले सप्ताह जो है उम्मीद है कि अमेरिका की सर्वोच्च अदालत में जो 50% टैरिफ लगाया गया है उसके ऊपर फैसला आना है, वो भी आगे की दशा दिशा जो है वो तय करेगी। दूसरा आपका प्रश्न था कि बजट में किन क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, इस समय में सरकार का पूरा जोर जो है विनिर्माण को बढ़ावा देने की है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर जरूर कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मेक इन इंडिया हो या पीएलआई हो, इन सब चीजों पे आप ज्यादा अच्छी खबरें सुनने को देख सकते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं, पारंपरिक क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि की बात करें या फिर रक्षा की बात करें, उनमें आवंटन जो है वो तो रहेगा ही रहेगा और उसमें आप बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। लेकिन फोकस की एरिया की हम लोग बात करें तो विनिर्माण पे हम ज्यादा देख सकते हैं।
Our next caller is from Delhi, Yogesh. Yogesh, welcome. Please ask your question.
Thank you so much. मेरे दो सवाल हैं, जिसमें से पहला सवाल नीति को लेकर के है निवेश के बजाय। जी तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो हम लोग अब चाइना को लेकर के नजदीकियां, मीडिया भी दिखा रहा है कि चाइना हमारे सपोर्ट में है क्योंकि चाइना भी सेम चीज झेल रहा है, तो ये क्या ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि हम अब चाइना की तरफ को झुकने लगे और अमेरिका हमारे को साइडलाइन कर दे, फिर बाद में चाइना में साइडलाइन कर दे, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी पहलगाम में और कई चीजों में गलत रुख रहा है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसे समय में कितना जरूरी है कि एक निवेशक कंट्री के लेवल पे, देश के लेवल पे भी डाइवर्सिफाई रखे अपने आप को।
देखिए, पहले प्रश्न का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार की नीति किस मामले में क्या होती है। जाहिर सी बात है कि हमारे लिए इस समय महत्वपूर्ण ही हो जाता है कि हम वैकल्पिक बाजार और वैकल्पिक जो हमारे क्षेत्र हैं वहां पर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने जो कहा कि चीन से नजदीकियों की बात है या अमेरिका से दूरी रखने की बात है, ये काफी चर्चाओं का विषय है और इस पर हम बहुत ज्यादा अटकलें नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि हमारे लिए जो बेहतर विकल्प साबित होगा हमारी सरकार उस पर जरूर फैसला करेगी। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपने कहा कि जो अनिश्चितता है उसमें एक निवेशक के लिए विविधीकरण क्यों जरूरी है। देखिए, विविधीकरण तो वैसे भी जरूरी है, और कहते ना एक पुरानी कहावत है कि सभी अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। तो एक टोकरी में सभी अंडे रखेंगे तो उसका नुकसान होने की आशंका जो है वो ज्यादा होती है। तो आप डाइवर्सिफाई वैसे भी करें, विविधीकरण आप वैसे भी करें, और जैसे जैसे उम्र का बदलाव होता है उस हिसाब से शेयरों में, चाहे बॉन्ड में या फिर बैंकों में या डाकघरों की योजनाओं में, सोना में, चांदी में, उसमें आपको अलग अलग निवेश जो है वो करते रहना चाहिए।
और दिल्ली से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
हेलो, नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, संसार में जो विश्व में जो उथल पुथल जो हो रही है, कुछ अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प जो है उनके कारण भी उनकी जो बुद्धि काम कर रही है इस समय कि ये टैक्स ज्यादा बढ़ाना या घटाना। तो जब तक ये हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब तक संसार में, विश्व में शांति नहीं आएगी। मेरा सवाल ये है कि ये हम बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, गोल्ड देके पैसा लेना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जेवर लेते हैं हम, बिस्किट नहीं लेते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहता है ये बिस्किट ठोस होता, अंदर क्या है हम नहीं जान सकते, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे?
देखिए, पहली बात कि बैंक लोन लेने के मामले में कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी अगर आपसे इस तरीके का कहता है कि बिस्किट के अंदर क्या होता है उसकी हम जांच नहीं कर सकते हैं, वो गहनों की भी पड़ताल करते हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन से कर सकते हैं। बिस्किट को लेने में कोई भी अगर अस्वीकार करता है या उसमें मना करता है तो आप उसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि सोने के बिस्किट में ज्यादा संभावनाएं होती है बजाय गहने और बाकी जो दूसरे विकल्प होते हैं। तो आप उसकी शिकायत जरूर करें, और कोई भी बैंक अगर आपको मना कर रहा है तो उससे उसकी वजह केवल ये कहना कि सोने के बिस्किट के अंदर क्या है वो कोई कारण जो है वो ठोस कारण जो है वो नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट कॉलर मिस्टर के सिन्हा फ्रॉम फरीदाबाद। मिस्टर सिन्हा वेलकम, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
हेलो
हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मिस्टर सिन्हा।
हेलो हेलो
जी, आप सवाल पूछें सिन्हा साहब।
सर मेरा ये सवाल है कि चिप मेकिंग कंपनियां जो अपने इंडिया की हैं उनके शेयर आजकल काफी गिरे हुए हैं। जानना ये था कि ट्रंप टैरिफ या अमेरिका में इसका कितना हिस्सा एक्सपोर्ट होता है और कितना हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमशन पे डिपेंड करते हैं।
देखिए, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपनियों में उनके शेयरों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उसका असर हमारे यहाँ भी कुछ जो इस क्षेत्र में हैं उनके शेयरों पर, जो आपने चिप मेकिंग की बात की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं समझ रहा हूं, तो आप सेमीकंडक्टर्स और उनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक रहा सवाल निर्यात का, तो अभी तो हम बहुत ज्यादा निर्यात करते नहीं है। इनफैक्ट निर्यात हमें तो हमारी आयात पर ही उसमें निर्भरता है। हमारे कई तरह की स्कीम्स आई हैं जिन स्कीम्स में बहुत सारी कंपनियों को मदद सरकार की ओर से दी जा रही है और वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अभी की स्थिति में उन कंपनियों में जो शेयर बाजार में है, चाहे वो आईटी की हो या फिर वो चिप मेकिंग में हो, सेमीकंडक्टर में हो, उनमें जो वैश्विक बाजार का चलन है उसी के मुताबिक यहां भी आप उसमें गिरावट या आप उसमें जो भी बदलाव देख रहे हैं उसका एक वैश्विक चलन ही है।
और गुजरात से हमारे श्रोता धीरज लाइन पे हैं। धीरज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्ते सर, For a while, our government has launched policies on maritime boats, port shipbuilding, and river coast development. Some of these are already showing results like port and shipbuilding. If we compare this with developed countries, we can guess what benefit we might get in the coming years. But from an investment point of view, like from a retail investor, how should we analyze this sector to find a good stock and strong companies and possible multi-backer for upcoming years? Thank you.
So there are two aspects you have mentioned, that how to find good stock, and the second you have asked that how to find multi-bagger. So just for the sake of our listener, multi-baggers are basically those companies which are giving you good return over a short period of time. So when we talk about how to find good companies, the best way to analyze the financial result is just to see the top line and the bottom line and whether there is some unusual movement. Like you take the 5-year numbers, and during that 5-year numbers, if the growth is, a very constant one, whether we talk about top line or the bottom line, that's a good company. And also see the what kind of order book they have. So if you are able to find these 2-3 elements from the book of that particular company, you can easily say that that company is good or bad. Second, talking about the multi-bagger, at this moment when the market is so volatile, it is very difficult to say that how to find that multi-baggers. In fact, many of the startups which are also in providing some kind of ancillary support, they are not doing well. So at this moment, I would say that multi-bagger, rather than focusing or going on multi-bagger, I would say that please focus on the company which have a long-term fundamentals, good and strong fundamentals.
और बिहार से हमारे श्रोता टिंकू लाइन पे हैं। टिंकू नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहते जो सारा इंडिया है उसमें मैं एक एफडी करा रखे हैं, ठीक है, और वो एफडी का समय अभी नहीं पूरा है, 27 में पूर जाएगा, तो ये क्या पैसा मिलेगा या ना मिलेगा, क्या होगा, इसका केस चल रहा है सहारा पे। और एक और सवाल चाहिए, जो अमेरिका जो भारत पे 500 टैरिफ लगाया है और ये 50% जो टैरिफ लगाया है, तो ये इंडिया का जीडीपी और ये 500 लगाया है, इसका क्या स्थिति होगा, इसके से थोड़ा जानकारी चाहिए।
देखिए, पहले वाले प्रश्न के जवाब में हम कंपनी विशेष पे चर्चा नहीं करते हैं, तो हम आपको उसके एक कंपनी विशेष पे हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सरकार ने इस मामले में कई कदम उठाए हैं। आप जो सहकारिता मंत्रालय हैं उनके तरफ से जारी किए जाने वाले बयानों पर नजर रखिए, वहां से आपको स्थिति काफी साफ होती हुई दिखेगी। दूसरा जो आपका प्रश्न है अमेरिका के 500% टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क लगाने का, निश्चित तौर पे वो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। रातों रात जो है वो एक नया बाजार ढूंढ लेना और वहां जाकर के अपने सामान को बेच लेना आसान नहीं होता, उसमें समय लगता है। लेकिन हाँ, पिछले जो हमारे पास आंकड़े आए हैं दूसरी तिमाही के, जब हमने 8.2% की दर से विकास किया और पूरे साल के 7.4% की जो बात आई है, और वो तब है जब अमेरिका ने 50% हमारे ऊपर अगस्त में टैरिफ लगा दिया, तो इसका मतलब है कि हमने उसका कुछ समाधान जरूर ढूंढा है और अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 500% जो कि एक प्रस्ताव के तौर पे है वो कानून में तब्दील नहीं होगा।
फ्रॉम भोपाल आवर नेक्स्ट कॉलर शंकर। शंकर वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग मार्केट मदर टीम।
गुड इवनिंग
सर। आवर एक्सपोर्ट इज वेरी मिनिमम एज कम्पेयर टू आवर टोटल जीडीपी एंड दैट टू यूएसए। वी आर डूइंग मोस्टली सर्विसेस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नॉट दैट मच। सो व्हाई सेंटीमेंट्स हैव गॉन बैड एंड एफआईआईज आर पुलिंग, should domestic investor be worried about it or we can keep on going with our SIPs without worrying that it will give us better than FD or any other form of investment return on our investment? Thank you.
Yeah, it's a very valid question, Shankar ji. You have asked that, of course, we are more on the services side rather than on goods. And also, US is one country where we are having trade surplus and not the trade deficit. Still, we are very much worried because that's the overall sentiment. It's not the just question of one country where what we are importing, what we are exporting to that particular country. It's the overall sentiment. The second thing is that what kind of rate actions being taken by the Federal Reserve? Of course, at this moment, we are seeing some kind of rate reduction. And if you can remember, just yesterday, US President Donald Trump has talked about capping the interest rate on the credit card. That's a very unique thing, and that is also showing that what kind of movement we are going to see on the interest rate front. So that Federal Reserve, if it continues to reduce the interest rate, that may be a good news, but overall sentiment is not very favorable because of the uncertainty, and especially after that US action against Venezuela. So that uncertainty is affecting. The next part of your question was that as a SIP investor, should be worried or should be stay? My advice would be please continue, because SIP is not something where you are putting money for 1 year or 6 months. You have to put money for say 5 year or 7 year. And normally equity, we have seen that over a period of time, it has given decent return and also in some cases good return.
Shishir, before we move to our next caller, let's take a quick look at the U.S. markets. Wall Street closed higher yesterday, buoyed by gains in chip stocks. However, a weaker-than-expected jobs report altered expectations for interest rate cuts by the Federal Reserve this year. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged 0.8%, the S&P 500 advanced over 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average increased nearly 0.5%. For the week, three main indices all gained sharply. Dow added 2.3%, Nasdaq rose 1.9%, the S&P 500 climbed 1.6%. On the economic front, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported that both total non-farm payroll employment, which increased by 50,000, and the unemployment rate at 4.4% showed little change in December last year. Welcoming our next caller, Kapil from Mumbai. Kapil, welcome. Please ask your question.
Yeah, thank you, madam. Good evening, everyone.
Good evening.
अभी जैसे सिन्हा साहब ने बोला कि 2025 में गोल्ड ने 60% की रिटर्न दी है और मोर देन 100% इन सिल्वर. So, what is the prediction for 2026? Can you please assist us? Thank you very much.
कपिल सर, आपने बहुत ही कठिन सवाल मुझसे पूछ लिया है कि इस साल सोने और चांदी की स्थिति क्या रहेगी. लेकिन एक अनुमान, जैसा कि हमेशा हम कहते रहे कि एक कह लीजिए कि एक विरोधाभास है कि दुनिया में जब कभी भी उठा पटक हो तो सोना उतनी तेजी से ऊपर भागता है. और इस कहते हैं इस साल की बोहनी बहुत अच्छी हुई नहीं है वैश्विक स्तर पे, तो उम्मीद की जानी चाहिए. ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि एक विरोधाभासी बातें हैं कि जब कहीं पे कुछ तनाव की स्थिति हो और उसका फायदा सोने को मिलेगा. चूंकि एक निवेशक के नजरिए से मैं कह सकता हूं कि सोने में स्थिति थोड़ी मजबूत ही बनी रहने के आसार हैं और चांदी में उससे ज्यादा कहीं मजबूती की स्थिति हमें देखने को मिल रहा है. कितने तक जाएगा, माफ कीजिएगा, ये भविष्यवाणी करना शायद मेरे लिए संभव नहीं है.
Absolutely, Shishir, completely understand. You see, with the global world order changing, the polarities changing, nations coming out with their specific these things, a lot of volatility in the financial markets itself. So in this case, would you, you know, at any point like to say that should we shuffle the portfolio that we have, maybe go for things which are less volatile depending on our age, some kind of advice?
Yes, certainly. Because, see, you have to review your investment and you have to review your portfolio every time. And then accordingly, you need to go for the what we call as the rebalancing. You have to do that rebalancing. And fortunately, we have some good side where you can go and put your money just for the hedging purpose. Like, as I told you, the post office saving schemes. People say, post office saving scheme, what we are going to get? Please remember, you use it as a hedging one. I mean, say for a 1 year period, you buy the NSE, or for 1 year period, you put some money in the saving account of the post offices where you are getting 4% interest rate, while in the bank where you have put up money, you are getting 2.6% or 2.7%. So please use the hedging instrument and continuously reviewing your portfolio. Even if you are an investor of say stock market, which sectors you are doing? Like somebody asked about the chip sector, and just you read that chip shares in US performed well on Friday.
Right.
So that's a contradiction which we are discussing here. But during the month of December, during the month of November, we found that across the globe, these companies were not doing well. And there were question marks also that whether we should continue our investment or not. So the best thing is review it, rebalance it. And the best thing is diversify. Don't put everything in just one sector or one particular F instrument. Equity, debt, gold, silver, and according to your age. If your age is less than 40, put more money in the equity. If your age is more than 40, reduce the exposure in equity, go for debt instrument, and also put at least 10% in gold or silver, either in the form of, say, biscuit or in the form of gold ETF.
And also, I think, to moderate our expectations. I think somewhere our expectations are
really... The problem is that we cannot cap our profit. We never say that this much profit is sufficient for me.
Right.
I mean, you can have just four chapati, but when somebody asks you how much money you want to earn, you don't have any answer. So that's a big problem.
Well put. I think Amrish has a question, but before that, Amrish, permit me to just quickly look at the oil prices. Global crude oil prices edged higher yesterday on rising supply concerns tied to intensifying protests in Iran. On Friday, Brent crude futures added almost 2.2% to settle at $63.34 per barrel, while WTI crude futures rose over 2.3% to close at $59.12 per barrel. For the week, Brent rose about 4%, while WTI gained almost 3%.
So, Shishir ji, jaise hum tel ki baat karein, zyada time abhi tariff hi sabke dimag mein rehta hai, lekin jis tarah se geopolitical situation hai, conflict chal rahe, Iran ki khas taur se hum zikr karein, to Iran ke jo halaat hai, usse aapko kya lagta hai, supply साइड में प्रॉब्लम है तो अभी तेल के दामों में हमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी चिंता है और खास तौर पे एक खाड़ी के देश में किसी एक जगह तनाव होता है ना तो उसका असर पूरे खाड़ी पे पड़ता है और खाड़ी चूंकि एक बड़ा सप्लायर है तो उसका असर पड़ेगा और दूसरी तरफ आपने वेनेजुएला की स्थिति देखी है तो अभी तेल के मामले में हम थोड़े से अनिश्चित हैं कि इसके भाव भी ऊपर जाएंगे नहीं और मुझे लगता है कि ओपेक जो है ओपेक प्लस जिसको हम लोग बात करते हैं वो इस दिशा में कोई ना कोई कदम उठाएगा. आप अगले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि कोई ना कोई उनकी तरफ से घोषणाएं आएंगी.
तो विश्व अर्थव्यवस्था पे आपको लगता है कि इसका अभी असर हमें काफी विपरीत कुछ देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल पड़ सकता है और वैश्विक परिस्थितियां अभी वैसे भी बहुत अनुकूल नहीं है.
सो वेट एंड वॉच एज वी से एंड वेरी डायनामिक सिचुएशन.
वेरी डायनामिक एंड वेरी इवॉल्विंग. एवरी डे यू हैव वन न्यूज विच इज अफेक्टिंग द एंटायर थिंग.
जी और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शशि जी इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
एब्सोल्युटली शिशिर, थैंक यू वंस अगेन. एंड नाउ बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर of the headlines. Budget session of Parliament to begin on 28th of this month. After 2 weeks of gains, benchmark domestic equity indices plunge around 2.5% this week, and global crude oil prices log weekly gains amid supply concerns. And that's all for today. Namaskar.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें. Market Hunter.